बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने, दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
शांति। आज हमारे बीच आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी हैं। हम एक हाथ की ताली से आज की इस पट्टी के बीच आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आदरणीय आत्म भाई जी बाबा के बहुत चुने हुए विशेष रत्नों में से है। शुरू से आपने मम्मा और बाबा की खूब पालना ली है और आपका बहुत स्पेशल रोल इसलिए रहा है कि साकार बाबा ने जब चित्रशाला बनवाई थी तो जगदीश भाई जी के साथ साथ आपका बहुत स्पेशल रोल रहा। चित्रशाला से लेकर आज इतनी फुल फ्लेज हमारी ज्ञानामृत प्रेस चल रही है जिसमें लाखों कॉपीज ज्ञानामृत के निकल रही है, ये सारा आप ही की लीडरशिप में, आपकी ही अध्यक्षता में और आपकी ही निगरानी में डेवलपमेंट हो रहा है। पुरुषार्थ ये सेवा के साथ आपका दूसरा एक बहुत शक्तिशाली पहलू रहा है। और आज ही सुबह में बात कर रही थी कि आत्म अभिमानी स्थिति आज की हमारी स्थिति स्वरूप का स्वमान है, तो आप कह रहे थे ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो ये आपका फेवरेट टॉपिक है, पसंदीदा टॉपिक है। तो आज मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आज भट्टी में आपके पुरुषार्थ के प्रयोग अनुभव और साथ साथ बाबा मम्मा के जीवन से आपने जो कुछ सीखा है देखा है आज हम सबके साथ अवश्य शेयर करें। आदरणीय आत्म प्रकाश जी,
ओम शांति। मीठे मीठे हमारे प्यारे बाबा के महावाक्य हैं कि ऐसा भी समय आएगा जैसे अभी आवाज से परे जाने में मेहनत लगती है ना, आवाज में आना आसान है और आवाज से परे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, बच्चों को बाबा कहते थे, परंतु वो भी समय आ रहा है। देखिए अब आवाज में आना मुश्किल लग रहा है लेकिन आवाज से परे रहना अच्छा लग रहा है। हम सभी को ऐसा सुंदर और पावरफुल वातावरण है कि याद में बैठे रहे, बोले ही ना, परंतु क्योंकि आज्ञा हुई है कुछ बोलने के लिए तो भी बोलना पड़ेगा। हम बाबा के बहुत सिकिलदे बच्चे हैं, बड़े पद्मा पद्म भागशाली हम सभी हैं कि हमको बाबा ने चुना और अपना बना लिया। क्योंकि इतनी सारी दुनिया है, विस्तार 7 बिलियन 700 करोड़ इस वक्त जीवात्मा इस धरती पर चल रही है, उसमें से हम ब्राह्मण आत्मा कितने हैं, थोड़े हैं। उसने अपना बनाया, हम किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोते हैं और ब्रह्मा मुख वंशावली है। कितना बड़ा सौभाग्य, देखो शिव बाबा परमात्मा गाड या शिव बाबा कहे और एडम या आदम कहे एडम ईव कहें, आदम बीबी कहें, ब्रह्मा सरस्वती कहें, इसका सारे धर्मों में यानी उसको मान देते हैं, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, चाहे और धर्म है, सभी धर्म वाले इसको मान देते हैं। हम ब्रह्मा सरस्वती हम तो कहते ही हैं, इन दोनों का बहुत मान है, ब्रह्मा सरस्वती और गाड का भी। देखो हम शिव बाबा के पोतरे बन गए और ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए। अभी कुछ समय पहले बाबा ने जब अभी फर्स्ट अव्यक्त बाप दादा का पाठ नहीं चला था, थोड़ा दादी हमारी अहमदाबाद में थी, एक संदेश आया था कि बच्चे बाबा ने बहुत कुछ बच्चों को दिया हुआ है, अमृत वेले अपनी प्राप्तियों को याद करके सदा खुशी में रहो। तो देखो मैं सोच रहा था बाबा ने ये कहा है, सबसे बड़ी प्राप्ति हमको क्या हुई है, सबसे बड़ी, भले हमें और खजाने मिले, ज्ञान का खजाना मिला, समय का खजाना मिला, खुशियों का खजाना मिला, सब मिला। तो मैंने विचार किया उस वक्त कि हम ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा मुख से पैदा किया, हम सब बाबा की सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, कम बात नहीं है। पहले ब्राह्मण बने तो सब खजाने हमें वो और मिले। तो अगर हम ये जब मैं याद करता हूँ, उसमें पढ़ते थे भागवत में कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, हम पढ़ते थे बचपन में कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तब ये पता लगा कि ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हम पैदा हुए, मुख वंशावली है। बाबा कहता है उससे भी देवताओं से भी बड़े श्रेष्ठ है, क्यों, देवता फिर भी अपने लौकिक जो माँ बाप से, भले योग बल की पैदाइश है, उनके लौकिक माँ बाप तो शरीरधारी तो आई, लेकिन हम तो स्वयं ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा के द्वारा, माँ हमारी ब्रह्मा है, उस द्वारा पैदा हुए। तो ये जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा एक नशा चढ़ता है, आनंद आता है, मजा आता है। तो हम तो बहुत और ही ज्यादा पद्मा पद्म भाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती और सारे जो पूर्वज हमारे, दादा विश्व किशोर, दादा विश्व रतन, दीदी, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, सबसे किसी न किसी रूप में हमारा उनके साथ सेवा का पार्ट रहा। तो सबसे मिले, सबसे सबसे पालना भी ली, सबसे कंधा से कंधा मिलाकर सेवा भी की थी। ये भी एक बड़ा, एक ड्रामा में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और बाबा ने तो कहा है, अभी हमें लक्ष्य दिया है, हमको क्या बनना है बताओ, बाबा ने हमको क्या लक्ष्य दिया, क्या बनना है हमको, बोलो है? क्या बनना है, क्या बनना है? राजा रानी है, लक्ष्मी नारायण तो बनेंगे बाद में, अभी क्या बनना है, है? फरिश्ता बनना है, और उसके और रूप में क्या कहेंगे, हाँ बाप समान बनना है। देखो अभी हमारा इमीडिएट लक्ष्य यह है कि हमको बाप समान बनना है। किस बाप समान, शिव बाबा समान तो नहीं बन सकते, वो तो सागर है, वो तो बेहद का मालिक है, बेहद है वो तो, ही इज लिमिटलेस है वो तो। बाबा ने एक दफा कहा था कि मैं शिव बाबा जैसे तो नहीं बन सकते, वो तो एवर एवर प्योर है और बेहद का मालिक है। हाँ ब्रह्मा बाबा जो साकार में जिन्होंने पाठ बजाया, सृष्टि चक्र आते हैं, वो ऊपर भी आते हैं, नीचे भी आते हैं। बाबा कहती हैं कि हमारा लक्ष्य अभी यह है कि हमको ब्रह्मा बाप समान बनना है। ये देख लो कितनी बड़ी, ब्रह्मा बाप समान बोलिए, कितनी बड़ी बात है ये। फर्स्ट जो फर्स्ट पहला मानव है सृष्टि का, एडम आदम, उस जैसा बनना है तो बहुत बड़ी बात। तो हम देखते क्या है अभी, कितना कहां तक पहुंचे, हम बन गए या नजदीक है या दूर है, अब विचार करो, कोई फासला तो नहीं है कि है फासला, अभी है फासला कि नहीं, बन गए, बन गए कितने, 90% नजदीक आ गए, वो भी नहीं कह रहे, तो बहुत फासला है, बहुत गल्फ है, खलीज है, डिस्टेंस है। लेकिन बाबा कहता है बनना भी तुम बच्चों को है, ये भी बाबा कहता है, कौन बनेंगे नहीं तो। देखो अब भट्टी करने के लिए आया है, कई काफी पुराने भाई बहन होंगे, भट्टी बाबा की कहां भट्टी करने के लिए आया, जहां ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा ने पाठ बजाया, कितने बड़ा ऊंचा पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, वहां भट्टी करने के लिए आया। बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं। यहीं पर बाबा चले पैदल, देखा पांव पड़े उनके, बच्चों से उनको पिकनिक की खिलाया पिलाया बहलाया, कितनी बड़ी बात है, ज्ञान की वर्षा की बहुत बड़ी बात है। तो उस स्थान पर आप भट्टी करने के लिए, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अब हमको उस वैसा ब्रह्मा बाप समान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया हमको भी वैसा करना पड़ेगा। देख लीजिए, जैसे बाबा ने क्या किया, मैं चंद बातें सुनाऊंगा आपको, आप भी जानते हैं, पढ़ते हैं, बहनें सुनाती हैं, फिर भी मैं प्रैक्टिकल 12 वर्ष ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का मौका, रहने को यहां आके मधुबन में, लेकिन सेवा करने का मौका मिला, उनसे पत्र व्यवहार करने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, उनके साथ खाने पीने का मौका मिला, उनसे साथ घूमने का मौका मिला, उनसे हाथ मिलाने का, उनकी गोद में जाने का मौका मिला, यानी साकार मम्मा बाबा के साथ ये हमने पाठ बजाया। तो वो कैसे थे वो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं, जैसे मैंने उनको देखा, जैसे मैंने समझा, ताकि हमने वैसा बनना है तो थोड़ा उनकी बातों को जाने तो अच्छी बात है। हम देखो फर्स्ट, मैं थोड़ा अनुभव सुनाता हूँ। फर्स्ट हम जब ज्ञान में आने से पहले हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में पटियाला में, और बचपन में बड़ी भक्ति की थी हमने, बहुत छोटे 10 साल की एज में इतनी भक्ति की थी, ये सब जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, भागवत पुराण, ये गीता वीता जैसे वो सारी, गरुड़ पुराण, ये सारे पुराण हमने सुने हुए थे, धार्मिक वृत्ति थी। और जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो सब छूट गया, क्योंकि पढ़ाई पढ़ते पढ़ते साइंटिफिक माइंड होने से सब जो डर था वो खत्म हो गया। और जब भक्ति भी छूट जाती तो क्या होता है, भक्ति में कुछ तो थोड़ा बहुत डर भी रहता है, बल भी रहता है, कुछ ना कुछ तो भावना रहती है, तो बुराइयां भी आ जाएंगी। फिर तो फिर हम एक भाई मिले, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया, यही आप आत्मा है। मैं थोड़ा क्यों सुना रहा हूं, आया तो बहुत लंबी हिस्ट्री, क्योंकि आज टॉपिक भी आत्मा है ना, तो वही आप आत्मा है। तो मैंने कहा हम तो आत्मा नहीं है, क्या प्रूफ है आपके पास? बहुत डिस्कशन होती रही, वो कहे आप आत्मा है, हमको तो शरीर है, शरीर एक मशीनरी है, थोड़ा भी कोई पुर्जा ढीला होगा या खराब होगा तो जैसे मोटर रुक जाती है या वो कंडम हो जाती है तो फेंक देते हैं, इसको जला देते हैं, तो क्या हम कहें, हम कैसे माने कि हम आत्मा? काफी दिन डिस्कशन चलती रही। तो एक दिन उसने कहा भाई, मैं अंदर तो मानता था हम आत्मा है क्योंकि धार्मिक वृत्ति थी, कि आज आप मान जाओ कि आप आत्मा है। कि मैंने कहा ठीक है, मैं अंतर तो था ही कि मैं मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, वह इतना ही। ये कहने की मानने की दरकार, वो कहा मैंने, उसी वक्त से अनुभूति होनी शुरू होगी, जिसे बाबा ने पकड़ लिया, उसी वक्त खींच लिया, अनुभूति, बॉडीलेसनेस, शांति की अनुभूति, एकदम न्यारापन महसूस होने लगा। जो आत्मा भ्रुकुटी में निवास बताया यहां रहती है, सब की भ्रुकुटी में देखना शुरू कर दे उसी वक्त से ही। बाजार में जाए तो ये भी आत्मा, दृष्टि वृत्ति भी काफी प्योर होगी, कमाल हो गया इसी एक बात से। तो बड़ा मजा आया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो साइलेंस में चले गए, खाना पीना पिक्चर जाना ये करना सब छूट गया, साइलेंस में चले गए, एकदम शांत हो गए, दोस्तों से दोस्ती खत्म, अपना लिखना शुरू कर दिया, आई एम सोल नॉट बॉडी, जो चीज मिले डायरी में मिले, द्वार मिले, ये मिले, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, आई एम सोल इंग्लिश में लिखते रहे। तो अपने को यानी पक्का करने के लिए बार बार लिखते थे, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, आत्मा हूं, वाजा लेसन है। तो प्रैक्टिस शुरू किए, जिससे क्या हुआ, चेंज आ गया। मैं तो आश्चर्य खाने लगा कि ये क्या बात है, इतना जल्दी चेंज। उसको पूछा भी, और तुम्हारे पास क्या ज्ञान है, हमें बताइए क्या है आपके पास खजाना। उसने दो तीन दिन में सारा ज्ञान बता दिया, इतना वंडरफुल ज्ञान लगा। हम किसी के प्रेम प्यार से नहीं आए, ना किसी दादी से मिले, ना कभी दीदी से मिले, बाबा मामा से भी नहीं मिले थे, बस केवल उनकी फोटो झाड़ में त्रिमूर्ति में देखी थी, देखा नहीं था। तो इतना उस ज्ञान से इतनी संतुष्टता आई, मेंटली कंटेंटेड हो गए, इतना मजा आ गया, सुख की प्राप्ति हुई। वास्तव में जो आज बाबा ने कहा ना, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, मुरली में क्या था आज, میرے بچوں سے پوچھو. کمال ہے, کتنی بابا کی میٹھی وانی تھی آج, کتنی مدھر پیار بھری وانی تھی, کیا کتنا نشہ تھا. اتیندری سکھ پوچھنا ہو تو میرے بچوں سے پوچھو. تو اتیندری سکھ کے بل یوگ سے نہیں آتا. یہ جو ہم گیان سنتے ہیں نا, مرلی سنتے ہیں, گیان سنتے ہیں, بڑا آنند آتا ہے. اور پہلے پہلے تو گیان سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, آنند آتا ہے, جیسے کہ ہم نے کچھ بہت پراپتی کر لی ہے, ایسا لگا تو بڑا خوشی ہوئی, بہت آنند آیا, بہت کنٹینٹیڈ ہوگی, سیٹسفیکشن ہوگی. پھر اس نے جب گیان سنا آتما کا, پرماتما کا, سرشٹی چکر کا, جو باتیں ہم نے پہلے شاستروں میں پڑھی ہوئی تھی ساری ریویل ہوگی. جیسے اور گیتا میں کہا ہے ارجن, ہم پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں, پھر بھی ملتے رہیں گے, یہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. یہ گیان ملا, بڑا آنند ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تو کوئی کوشچن نہیں اٹھا ہمارا. یوگ سیکھا, یوگ میں اڑنے لگ گئے, یعنی بہت جلدی چار پانچ دن میں سارا کچھ اتنا مزہ ہوا آ گیا. تو لوگ جو ہمارے فرینڈس تھے وہ بھی حیران ہوتے تھے, یہ کیا اس کو ہو گیا ہے, بٹ ہی از بیکم, کیا بنتا جا رہا ہے. تو ہم نے کہا بھی اچھی بات ہے, ہم تو آئی ایم بیکمنگ سینٹ. تو تھوڑے دنوں کے بعد ہی تو اس نے کوئی ایسا لگ کہ کھینچ رہے ہم کو, سم ون از پلنگ می. تو ان دنوں بابا مما آئے ہوئے تھے راجوری گارڈن دلی میں, تو اس نے کہا آپ جاؤ بابا مما سے ملنے کے لیے جاؤ. ہم آئے پہلی دفعہ اپنی دلی کیپٹل میں, راتری کو پہنچے, ایسا لگا کہ ہم اپنے گھر میں پہنچے. ہم بتا دیا آپ, کیونکہ بہت پرانی اور بچھڑی ہوئی آتما تھی. اور صبح ہم بابا مما سے ملے, تو ایسے ملے کہ ایسا لگا کہ جیسے ہمارے یہ لوکک ماں باپ یہی واسطہ میں, ان کا چمکتا ہوا چہرہ, ان کی پرسنالٹی دیکھ کر کے بہت آکرشت ہوئے, اور وانی سن کے تو اور ہی موہت ہو گئے. کسی نے نہیں کہا تھا کہ بابا ماما سے کیسے ملتے ہیں, یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے گود میں جانا ہے, یہ کرنا, کسی نے بتایا نہیں تھا. ہم فٹافٹ جب اس کے بعد چیمبر ہوتا تھا نا, کلاس کے بعد چیمبر ہوتا تھا, بابا ماما بیٹھتے تھے اور سب بچے بابا سے ملتے تھے. ملے, گود میں گئے, تو بابا نے بابا کو معلوم تھا کہ میں کیا ہوں, میں پڑھتا ہوں. پہلے پہلے بابا کی ایک مہاواکی نے اٹھایا, میرے لیے وردان دیا. آپ سن کے آشچرے کہیں گے, سناؤں میں آپ کو. بابا نے کہا اس میں بھی وناش کی بڑی تیاری تھی, یعنی جب سے بابا کا شیو بابا آئے برہما تن میں آئے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی رہتی کہ وناش سامنے لگتا ہے, نزدیک لگتا ہے. وہ مصر کا جھگڑا تھا, سویز کا جھگڑا تھا, وہ 1957 1857 میں ہوتا نا, وہ لڑائی ہوئی تھی, 100 سال پورے میں اب ہونے والی پھر ہو جائے گی, یعنی ایسا لگتا تھا کہ وناش سامنے کھڑا ہے. بابا نے کہا بچے یہ پڑھائی تمہارے کام آنے والی نہیں ہے, سپشٹ کہہ دیا. یہ نہیں کہا کچھ بس کیا, تھوڑا سوچا بچہ نیا ہے کچھ نہیں, بچے یہ پڑھائی تمہارے کام آنے والی نہیں ہے, اس لیے کیا کرو, اس ایشوی دھندے میں لگ جاؤ. یہ بابا کے مہاواکیہ تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہمیں تو نشچت تھا کہ اتنا اونچا گیان جو دینے والا گیان ساگر کے بغیر کوئی ہو سکتا نہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کریں. پھر ایک میں نے لیٹر لکھا بابا کو وہاں سے, جب ویراگ تھا, بہت ویراگ تھا, کسی چیز میں دل پڑھنے میں دل لگتا نہیں تھا بالکل. تو بابا کو انگلش میں لیٹر لکھا, تو بابا نے انگلش میں جواب دیا, میں آپ کو سناتا ہوں وہ لیٹر. موسٹ بلیوڈ بابا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنسٹرکٹ بلڈنگس اینڈ ڈیزائن بلڈنگس, بٹ آئی وانٹ ٹو بی اے اسٹون آف دا ایڈیفس وچ یو آر اریکٹنگ. انگلش میں لکھا کہ آپ اتنی جو ستیو کی محل بنا رہے ہیں اس میں ایک, ستیو کی دنیا بنا رہے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا پتھر بننا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیزائن ہائی ویز, بٹ آئی وانٹ ٹو رن ٹو دا آن دا ہائی وے لیڈنگ ٹو پرم دھام اینڈ ٹو گولڈن ایج. اس پرکار سے لیٹر لکھا بابا نے, پھر انگلش میں جواب دیا, روٹ می ان انگلش, چائلڈ بی پیشنٹ, گیو دس نالج ٹو یور کو انجینئر, یاد ہے کو انجینئر, اینڈ یور پیرنٹس. تو ہم تو یہ شروع سے کہا ہمارا بابا ہے, باپ مان لیا تو جو وہ کہے وہ سب ستیہ. مائی دادیوں نے کیا کیا, بابا کے بچے بنے, جو بابا نے کہا, بابا نے کہا اگلی دیواری نہیں آئے گی, انہوں نے کسی نے وہ نہیں کیا, سندیہ نہیں کیا, وہ صحیح سے نہیں آیا, نہیں, بابا نے کہا نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی. اس میں کہہ سکتے تھے ابھی استھاپنا تو ہوئی نہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جو بابا باپ مان لیا نا, ہی از اوور فادر, ہی از اوور ٹیچر, جو وہ کہے گا ہمارے کلیان کے لیے کہے گا نا, تو بابا نے کہا تو ٹھیک تھا. جو بابا کہتے تھے ہم اسی پرکار سے کم ستھول میں تو وہ چلتے رہتے تھے. باقی بابا کہتا نرنتر یاد کرو تو وہ تو نہیں کر سکے, لیکن جو ستھول باتیں ہوتی تھی ان کو تو ہم شریمت جی سے کہتے ہیں उसको तो हम फॉलो करते चले थे। जब बाबा ने कहा को इंजीनियर, हमने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको ज्ञान देना शुरू किया। हमारी एक त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी उन दिनों में, हम 50-60 लेकर के एक बस में बैठ जाते थे और सारे बस वालों को दे देते थे पड़ोस को। और वो उस वक्त त्रिमूर्ति मैगजीन आजकल के ज्ञान नंबर की तरह नहीं होती थी, इसमें अनुभव है, आर्टिकल है, ये है वो है, उसमें क्या होते थे पता है, एक पेज खोलोगे गॉड इज परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, दूसरा खोलो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, तीसरा खोलोगे आत्मा 84 लाख यूनानी आगती, चौथा कहो गंगा पतित पावनी नहीं, ऐसे ऐसे आर्टिकल होते थे और जो कि बिल्कुल सटीक होते थे। तो हम उनको देते वो कहते ये क्या बातें आपकी है, मैंने कहा आप मेरे से डिस्कस कीजिए। इतना नशा था, हम उनसे बात करते थे कि मान जाते थे बात तो आपकी राइट है। इस प्रकार से चलते चलते हमने अपने लौकिक परिवार वालों को भी ज्ञान दिया जो थे, स्टूडेंट्स को भी ज्ञान दिया जो बाबा ने कहा था। उस वक्त तो दादियां भी जो हम दादियां कहते उसको बहने कहते थे फ्री थी। स्थान स्थान पर कई सेवा केंद्र खुलते रहे और बाबा ने खुलवाया और चंडीगढ़ नाभा और जलंधर इत्यादि इत्यादि भिन्न भिन्न, क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञान विस्तार करो तो विस्तार में हम लग गए। इसी प्रकार से हम जब लोग एक घर में गए, मैं एक बड़ा सुनाता हूँ इंस्टांस, उसके बाद मैं और बात करूंगा। हम लोग एक परिवार वालों को ज्ञान दिया, हमारी माता जी फटाफट ज्ञान में आ गया, अभी भी जिंदा है, 108 साल की है, हमारे साथ नीचे रहती है वो सबसे पहले तो वो ज्ञान में आए। तो हमारे लौकिक पिताजी कहे भगत थे बहुत जबरदस्त श्री कृष्ण के, कहता ज्ञान आपका बहुत अच्छा है लेकिन अगर मुझे आपका बाबा कुछ दिखा दे यानी साक्षात्कार करा दे तब मैं ज्ञान को मानूंगा। और हम तो अभी कुछ देखा था नहीं, तो हमारे यहाँ भोग लगता था संडे को भी और गुरुवार को, उनमें दो दफा भोग लगता था। तो हमारी एक ध्यानी दादी थी, आती थी अम्बाला से भोग, खास भोग लगाने के लिए। चलिए प्रकार से तो उनने शर्त रखी मेरे लौकिक पिताजी ने कि अगर कोई साक्षात्कार हो तो मैं मानूं। तो एक गुरुवार को हम सब बैठे थे, भोग लगा रहे थे, तो वो उठ के खड़े हो गए जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हो रहा था कि कुछ हो रहा है, तो पकड़ते हैं उनके हाथ में नहीं आता, उसको पकड़ते हैं फिर हाथ में नहीं आता, वो बहुत घूमते रहे, उनको कुछ हाथ नहीं लगा, बड़े उदास हुए, नीचे उतरे। मैं रियल अपने आंखों से देखा हुआ देख रहा हूं, बता रहा हूं। पहले तो ध्यानी दादी आकर के वो भी ऐसे हाथ करते थे, कभी फल देते थे, कभी फ्रूट देते थे, कभी हमें हार देते थे, बहुत कुछ होता था। हम कहते ये हो सकता है, थोड़ा हमें संशय भी दी था और निश्चय भी थे हम होगा, बाबा कहते इसमें तो कोई रखा नहीं है, ध्यान में हम न्यूट्रल थे। लेकिन जब मैंने देखा अपने लौकिक पिताजी को, ना वहां कोई दादी मिली है, ना कोई बाबा है, ना भी कुछ देखा किसी को नहीं, खड़े हो गए और किसी को पकड़ रहे हैं और हाथ में नहीं आता, तो उदास हो गए। मैंने क्या हुआ जी, कहते मैं ऊपर कहीं गया तो बहुत छोटा बहुत मीठा सुंदर बच्चा श्री कृष्ण मुझे देखने में आया, मैं उसको पकड़ता था तो वो यहां जाऊं तो वहां चला जाए, वहां जाऊं तो वहां चला जाए, मैं पकड़ नहीं सका, उदास हो गया वो। तो फिर आपके बाबा देख आए कि बच्चे जब तुम पूरी धारणा करोगे तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा, ये बाबा ने उनको वो आज्ञा की। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं धारणा क्या, सब बातें तो ठीक है, खान पान सब ठीक कर लेते हैं, सब हो जाएगा। जब उसने माना तो अगले गुरुवार फिर वो हम बैठे थे समर वेकेशन में, हम गए हुए थे, फिर भोग लगाया, फिर उठे, फिर वो श्री कृष्ण को पकड़ा, बैठ के बड़ा आंसू बहाए, मैं देख देख के आश्चर्य कर रहा था। ये एक हमारे सारे लौकिक परिवार को निश्चय कराना था कि देखो ये ध्यान से भी कितनी यज्ञ की स्थापना हुई। हम बताए ध्यान का पाठ कोई कम नहीं है, जितने भी यज्ञ के राज है वो ध्यान के पाठ से बहुत खुले हुए हैं। जब हमने उनको देखा हमें और थोड़ा मजबूती आ गई। तीसरा सारा हमारा लौकिक परिवार, भाई तीन भाई चार भाई और बहने भाभियां सब इस ज्ञान में चल पड़ी। वो अभी भी कोई चले गए, शरीर छोड़ गया, कहीं अपने अपने सेवा केंद्रों पर कहीं हैं, अपने सेवा में चल लग गया। तो बाबा ने कहा था अपने लौकिक परिवार को ज्ञान दो, तो लौकिक परिवार को ज्ञान दिया। स्टूडेंट्स अपने को इंजीनियर को ज्ञान दो, खूब लेटर लिखे। जो कभी एक दफा दादी जानकी जी को लेके चंडीगढ़ में वो अमृतसर वो कराने के लिए, भाषण कराने के लिए, जो जो बाबा कहते कि हम वैसे करते गए। कभी क्लास में जाते नहीं थे, स्टूडेंट पढ़ते नहीं थे, कोई इंटरेस्ट बिल्कुल डिस इंटरेस्ट था। लेकिन मालूम नहीं कैसे हम चार साल पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग पास भी कर ली, मालूम नहीं कैसे पास, हमें पता ही नहीं हमने कैसे पास की। रिजल्ट आया कि हम पास हो गए। तो फिर हम बाबा के पास आए अपने लौकिक माता पिता को लेकर के। बाबा ने कहा था, मैंने तो पहले कहा था तुम्हें कि बच्चे तुमको तो कोई जॉब वॉब करना नहीं, नौकरी करनी नहीं, अभी बस ठीक है, तुम्हारी इंजीनियरिंग काम आएगी नहीं। हमें वहां तब से भेज दिया भ्राता जगदीश जी, तुम्हारे संजय उनके साथ तीन चार साल रहने का मौका मिला, ट्रेनिंग ली, और उसके बाद तो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा होती रही, कहीं कभी कोई सेवा कभी कोई सेवा। अंत में फिर हमें एक चित्रशाला, चित्र बने थे सीढ़ी का, हमने एक चित्र सीढ़ी का बनवा के बाबा को भेजा, फर्स्ट जो हमारा अटेम्प्ट था। क्योंकि जगदीश भाई भी सोचते थे आप इंजीनियर को मेरे पास भेजा, इतने पढ़े लिखे, इसको कोई बात तो होगी ना, बाबा त्रिकाल दर्शी कुष्ठ में जन्म पत्री जानता होगा, अदरवाइज प्रिंटिंग के काम में हमारा क्या मतलब था। फिर भी हम चलते रहे क्योंकि हमें कोई भी काम मिले, यहाँ देखो गोल्ड मेडलिस्ट खाना बनाते थे, कोई कुछ करता है, हमें उस बात की दरकार। हमने भी कुछ यहाँ कुछ दिन खाना बनाया यहाँ पर कि पानवर में बाबा के दिनों में, तो कोई भी काम मिले यज्ञ में, तो कुछ भी कार्य मिले वो वास्तव में हमें शिरोधार्य एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो चलते रहे, फिर चित्र बनवा के भेजा, तो बाबा को दादी प्रकाशमणि जी और बड़े भ्राता बिश्वकिशोर जी आए हुए थे उनके द्वारा, तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। बस तब से मेरा जो कनेक्शन था, बाबा मुझे लेटर लिखना शुरू करते थे, आप मुरलियों में कई दफा आता है बच्चे ये बनाओ ऐसा करो इसको ये चेंज करो वो करो। तो हमने एक चित्रशाला बनाई, स्टूडियो बनाया वहां पर यमुना पार में, तो चार पांच आर्टिस्ट रखे, तो एक चित्रों का सेट हम बनवा के लाए बाबा को दिखाने के लिए हिस्ट्री हॉल में। बाबा और दीदी थे, मम्मा शायद कहीं गई हुई थी, तो बाबा ने वो देखा। मैं क्यों सुना रहा हूं, बाबा के एक और महावाक्य है। तो बाबा ने देखने के बाद अपने कमरे में गए, अच्छा लगा, कुछ करेक्शन भी दी, डायरेक्शन भी दी, इंस्ट्रक्शन भी दी। तो फिर हमें बुलाया कमरे में अपने, जो अभी मैं जाता हूं मुझे सारा सीन याद आता है। वो बाबा गद्दी पर बैठे थे, मैं नीचे बैठने लगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे मेरे साथ बैठो, ऊपर गद्दी पर बैठो। मुझे तो वो नहीं था, लगने लगा मैं बाबा के साथ कैसे बैठूं। तो बाबा के महावाक्य सुनो आप सभी के लिए, बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी गद्दी, बच्चों की गद्दी। केवल यहां नहीं, यहां भी और वहां भी। वहां कहां है सत्युग, ये बाबा के महावाक्य है। तो यही हम सभी के लिए है, हम बाप का कार्य कर रहे हैं, उसके मददगार है, उनकी गद्दी जो सेवा केंद्रों पर है वो। कोई भी अगर हम अपने घर में भी रहते हैं, अगर हम समझे बाबा का ये कार्य है, ये बाबा का घर है, बाबा का बिजनेस है, मेरा नहीं उसका बिजनेस है, वो ही करा रहा है, तो उसकी गद्दी होगी ना। जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। तो ये महावाक्य इतने वरदान इतना जबरदस्त लगा, बहुत उमंग उसाया। वैसे वो जब से हम चले ज्ञान में बड़ा मोमेंटम था, बड़ा एंथुजियाज्म था, कभी हमें जोश खरोश हमारा कभी कम नहीं हुआ, चलते रहे, कोई ढिलाई नहीं आई। भले याद बाबा कहते निरंतर वो नहीं था, परंतु सेवा में और किसी बातों में वो था। तो बाबा ने जब ये महावाक्य उच्चारण की बहुत नशा भी चढ़ा और खुशी भी हुई, और बाबा की बात सुन के बड़ा उमंग उत्साह भी बड़ा। आप मानेंगे इसी एक महावाक्य ने बहुत कार्य कराया। बाबा में एक खूबी थी, बच्चे में कोई भी किसी में भी कोई छोटी सी भी गुण है ना, उसको मैग्निफाई कर देते थे। ये बाबा के वो थे, उसको छोटा भी कोई गुण देख करके, भले उसमें कितनी कमियां हो, छोटा सा भी गुण उसको मैग्निफाई करके ऊपर उठा देते थे। हम बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए, जो हमारे टीचर्स हैं वो है, हर एक में कोई ना कोई तो गुण है ही, तो उसको भी हम उसको अवगुण को ना देख करके मैग्निफाई करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमने चित्रशाला बनी, कितनी हजारों प्रदर्शनियां बनी होंगी, और कितने म्यूजियम बने वहीं से, कितने मेले बने उससे, लगातार पेंटिंग होती रहती थी रात दिन। बाबा कहते हैं बच्चे वहां भेज दो, वहां भेज दो, ऐसे भेज दो, तो कितना बाबा से संबंध हो गया, बाबा से लिखा पढ़ी होती थी, हम चित्र लेके आते थे दिखाते थे। उससे फिर ये शिव का चित्र किरण वाला बना, कैसे बैज बना, ये सारी हिस्ट्री है पुरातन। यानी कैसे दादा बिलकिशोर ने पहले प्रिंटिंग सिखाई, यानी ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती, मुझे ले गया प्रिंटिंग में वो सिखाया। तो इस प्रकार से चलते चलते फिर हम जगदीश भाई के साथ भी बहुत रहने का मिलने का, 30 साल तक भ्राता जी के साथ सेवा करने का मौका मिला। कितने जबरदस्त थे, महान योगी, महान ज्ञानी, महान तपस्वी, हम कहें महान सेवाधारी थे, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। हम बताया इकोनॉमिकल थे, बहुत वो सबको आगे बढ़ाने वाले थे, ऐसा हमारा उनसे संबंध रहा। तो इस प्रकार से चलते फिर हम एक और बात सुनाते हैं बाबा की, कि हम फर्स्ट टाइम जब दिल्ली के बाद यहां पर आए, उस वक्त बाबा की एज 80 साल की थी, 80 ईयर्स, और हम कब थे, 22 साल, कितने होंगे 25 साल के होंगे, यंग थे, उस वक्त इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, 25 साल 21-22 साल के थे। हम ब्लेजर पहना होता था, कैमरा हमारे हाथ में था, हमने बाबा से मिलने जा रहे हैं। तो बाबा यहां पर जो है ना अभी शांति स्तंभ है, उस वक्त ये सारा वो था, लॉन था, अभी वो टीचर ट्रेनिंग भी नहीं बना था, ये कुछ नहीं बने थे। तो बाबा उस लॉन में खेल रहे थे, कौन सा खेल, क्रिकेट, क्रिकेट। दादा विश्वधन ऐसे बाल फेंकते थे और बाबा ऐसे करते, जैसे बच्चे नहीं खेलते आजकल, वो गलियों में खेलते ना, ऐसे नहीं कि जैसे वो क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे पकड़ते थे। बड़ा रमणीक सीन था, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी, बड़ा खुश हो रहा था कि हम भी खेले। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की कि मैं फोटो ले लूं, कितना बड़ा वंडरफुल सीन, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा पे सब ये खेल रहा है, बच्चों को बहला रहा है वो। तो मैंने लिया फोटो लेने की कोशिश की, बाबा ने खेल बंद कर दिया कि बच्चे नहीं फोटो मत लो। क्यों बोला, बाबा ने कहा बच्चे देखो महावाक्य सुनो, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये, शिव बाबा, बाबा ने बोला। और ये तुम तो किसी काम का नहीं, देखो यानी बाबा उस तन के लिए कह रहा है कि ये तन तो किसी काम, मेरा तन क्या है। यानी बाबा हमेशा कहते थे शिव बाबा को याद करो, इस शरीर चीजों को, शरीर धारियों को भूलो, ना शरीर को देखो ना शरीर की फोटो लो, कभी नहीं लेते। मेरा फोटो कोई भी 12 साल तक कभी हमने कोई फोटो नहीं खिंचवाया, कि बाबा ने कहा था क्या करेंगे फोटो ना, मम्मा के साथ बाबा के साथ भी नहीं। तो इस प्रकार से बाबा हमेशा कहते थे ये देह को, देह के संबंधों को भूलो। बहुत वो देखो बाबा की हिस्ट्री आप देखेंगे, हम जब फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आए उस वक्त आए थे, क्या वंडरफुल सीन था। उस वक्त वो जिंदा थी, बाबा की जो थी युगल यशोदा वो भी थी, मम्मा की माँ रोचा भी जिंदा थी, और सारे लगभग जिंदा थे। तो क्या देखा, नजारा बड़ा सुंदर था। देखो मम्मा की जो माँ रोचा थी, मम्मा क्या कहती थी, मम्मा, और मम्मा उसको बच्ची कहती थी। कहीं सुना आपने ऐसा, एक गांधी जी ने माँ कह दिया था, बड़ा वाबेला मचा दिया। यहां तो मम्मा, मम्मा की जो माँ थी उसको कहती थी मम्मा, और मम्मा उसे बच्ची कहती थी। वंडर है कि नहीं बताओ। कोई देह बांध था, बाद में मालूम पड़ा कि ये मम्मा है, एक मम्मा की माँ है। और जो बाबा यशोदा उनको बच्ची कहता था, उसकी युगल है, और यशोदा उनको कहती थी बाबा कहती थी। क्या कमाल है, कितना देह सह देह के संबंध भूले हुए थे। वंडरफुल है ये सीन देख करके, कितनी देख के बड़ा आश्चर्य लगता था। देखो कितना बड़ा अभियान आया हुआ, कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बताओ। हाँ बहुत जबरदस्त था। तो मैं बड़ा देख के खुश हुआ और देखा कैसे बाबा प्यार का सागर था। कभी मिल रहा है, किसी को गोद दे रहा है, किसी को वो अमृत पिला रहा है, किसी को प्यार कर रहा है। बाबा के हर बात में विशेषता थी। किसी को ऐसे देख लेंगे बाबा ना, उड़ जाएगा वो। किसी पर हाथ रख देंगे, वाह मेरे जैसा तो कोई है नहीं। किसी को पकड़ के चला देंगे, खुश हो जाएगा। बाबा के हर एक्शन में, हर बोल में, हर विचार विशेष था। तो हमको क्या करना है, हमारा भी ऐसा होना चाहिए। बापसमान भी हमारे देखने में, हमारे हर कर्म में, हमारे हर बोल में विशेषता और विशेष हो, तभी तो बापसमान बनेंगे ना। तो बाबा को देखा तो बड़ा, फिर बाबा ने कहा चलो बच्चे फोटो ले लो, कोई अर्जा नहीं है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। फोटो हमने लिया, रखा हमने कभी नहीं, हमने क्या पता। हम तो समझते थे क्या होगा, हम को समझते थे बाबा मम्मा जाने वाले थोड़ा है कोई, कभी नहीं सोचा था स्वप्न में भी कि बाबा मम्मा हमें कोई साकार में, हम 20 साल के, 25 साल के, बाबा 80-82 साल का, हम सब इकट्ठे चलेंगे। बाबा कहता था वो गीता में है ना, मच्छरों माफे हम उड़ के जा रहे हैं, हम समझते थे हम सब इकट्ठे जाएंगे, कौन वो, हम साथ आ जाने वाले हैं। तो कभी कोई फोटो खिंचाने की कोई चीज, इतने बाबा ने पात्र हमको लिखते थे, हमने कोई पात्र रखा ही, ये क्या बड़ी बात है। बाबा बाबा तो अपना है ना, साथ साथ जाने वाले, कहां हम छोड़ने वाले। इस प्रकार से चलते 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 रहे, और बाबा ने हमको भेज दिया वहां पर, इस सेवा में लगा दिया। तो खूब सेवाएं बाबा ने कराई भी, करावन हार तो वही है, हम क्या है। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े पेंटर, बड़े बड़े इतने लोग बैठे हुए हैं, हम तो कुछ ना चीज, कुछ उसके मुताबिक हम कुछ भी नहीं थे, फिर भी हम सेवा करते रहे। और भ्राता जगदीश जी के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के हम आते रहे, दिखाते रहे, और भिन्न भिन्न चीजें बनती रही। और फिर हम जब बाबा हम जब आए थे तो लौकिक माता पिता हमारे साथ आए थे। तो जब बाबा ने कहा तुम्हें वहां जाना है, जाप नहीं करना है, पहले जयपुर भेज रहे थे, फिर वहां भेज दिया। तो हमारे लौकिक फादर थोड़ा घबराते थे भाई क्या, इतना जीवन पड़ा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो मम्मा से कहते हैं मम्मा अगर ये जाप भी करेगा हमें कोई पैसे की दरकार नहीं है, भले यज्ञ में करे। मम्मा ने कहा नहीं, जैसे बाबा त्रिकालदर्शी कह रहा है वैसे हमको वैसे चलना है। तो इस प्रकार से हम इस सेवा में लग गए, और इतने साल से समय बीत गया, आज कितने वर्ष हो गए, 56 वर्ष बीत गए उस बाबा ने जो सेवा दी, उस सेवा में लगे हुए हैं। और बहुत बहुत पानी बह गया, अब थोड़ा नजदीक पहुंचे हैं, और आशा है कि अभी जल्दी से जल्दी ये बाबा आया है और हमको ले जाने के लिए ले जाएगा। हम बताएं आपको, हम चाहते हैं बाप सम्मान बनने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा, बाबा कैसे बने। देखिए बाबा हमेशा कहते हैं हमको फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, ठीक है ना। बाबा कर्मातीत बन गए, कोई भी कर्म नहीं। देखो बाबा का 18 जनवरी 1969 का सीन क्या था, आप देखिए, जब उन्हें अव्यक्त हुए, कोई कर्म भोग को भी पार कर लिया, शरीर का कोई अट्रैक्शन नहीं था, यानी कर्म भोग ने खींचा नहीं उसको। एक कुछ समय पहले बाबा के मुख से ज्ञान अमृत निकल रहा था। अगर हम कहें कि कर्म भोग खींचता तो ज्ञान कैसे निकलता, ज्ञान अमृत बह रहा है उनके, इतने ऊंची ऊंची वाणी, निराकारी बोल निराकारी ऐसे दोनों के शब्द थे। तो कर्म भोग को भी पार कर लिया और किसको हाथ दिया, दादी के हाथ में हाथ मिलाया। क्या कोई लौकिक तो नहीं था ना, शरीर सहज शरीर के सब चीजों को भुला दिया, यानी प्यारे न्यारे प्यारे हो चले, अव्यक्त हो गई, फरिश्ता बन गई। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ा इम्तिहान जो सबको पार करना है, इस शरीर को छोड़ना। हम खुशी खुशी जाए उड़ जाए, वो है इम्तिहान, फरिश्ता बन जाए। तो बाबा कैसे फरिश्ता बने, हम फरिश्ता कैसे बनेंगे, कर्मातीत कैसे बनेंगे? फर्स्ट स्टेज, कर्मातीत बनने की फर्स्ट स्टेज क्या है बताओ, पहली स्टेज क्या है बोलिए? पहली स्टेज है विकर्मा जीत बनना। बस अगर हम चाहते हैं कर्मातीत फरिश्ता बने, पहली स्टेज है विकर्मा जीत बनना। अब हम ब्राह्मण हैं, बहुत पुराने ब्राह्मण बैठे हैं, अब तो बाबा को भी निश्चय है, बाबा को भी फेत है कि मेरे ब्राह्मण बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होता होगा। ठीक है, कोई नहीं होता ना विकर्म, होता है नहीं, हम आगे निकल गया, विकर्मा जीत, विकर्म नहीं होता होगा, गुस्सा करना या वो जो बाबा कहते हैं मुख्य विकार, वो विकर्म कर्म में आ जाना, ये हमारे हम ब्राह्मणों के डिक्शनरी से बैर होगा, है ना बैर? ठीक है, बैर ही होगा। दिस इज फर्स्ट स्टेज, वी हैव क्रॉस्ड दिस। सेकंड स्टेज क्या है बोलो? सेकंड स्टेज है विकल्पा जीत बनना। नो विकल्प, हम बता दें आपको, हम ब्राह्मणों की बुद्धि से मन से विकल्प खत्म। बाबा भी कहते हैं आप ये वो, पहले बाबा कहते थे मुरलियों में, बच्चे चलो हरजा नहीं विकल्प है लेकिन विकर्म ना हो, बाबा पहले मुरलियों, अभी आता है मुरलियों में, लेकिन वो स्टेज पहले की थी। नो विकर्म, नो विकल्प आल्सो, क्योंकि विकल्प जो है हम अभी योग लगाते हैं, बाबा को याद करते हैं, उसे बैटरी चार्ज होती है, होती है ना चार्ज, खुशी आती है, शांति आती है, मजा आता है, आनंद आता है, बैटरी चार्ज हो रही, पावर आती है। विकल्प आया मींस बैटरी डिस्चार्ज। ये देख लीजिए, आपने जो कमाई कर रखी थी, विकल्प आया मींस बैटरी डिस्चार्ज। डरना चाहिए इससे, नो विकल्प, बिल्कुल विकल्प ना आया। अगर कोई भूले भटके आया फौरन निकालो, ओहो भगाओ उसको, अंदर मत घुसने दो, हटाओ, पहले तो आना नहीं चाहिए। अगर आ भी जाए किसी कारण से, कोई बात से, वातावरण को देख करके, एक सेकंड क्या 100th of a second भी टाइम लगना, विकल्प नो विकल्प, फर्स्ट सेकंड इज विकल्पा जीत। ऐसा होगा, बाबा को फेथ है। अभी बाबा अगर बाप दादा कभी नहीं कहते विकल्प पर विजय पाओ, क्या कहते हैं? थर्ड स्टेज क्या है बोलो? थर्ड स्टेज कौन सी है? व्यर्थ अतीत। बस अब बाबा कहते हैं व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, बाबा कहते हैं जो थोड़ा बहुत व्यर्थ रहा हुआ है उसको भी समाप्त करो। व्यर्थ आती, फरिश्ता बनना है तो आप, पहले हम सोचते थे कि व्यर्थ का मतलब क्या है, बहनें तो बहुत भाषणों में सुनाती हैं, ये क्यों, ये क्या, ये कब, ये कैसे, ये कौन, ये शब्द उच्चारण करना, किसी बात को, इंसिडेंट को बोलना, ये व्यर्थ है। लेकिन दादी गुलदार ने क्लास कराई थी, बड़ा जबरदस्त बोला, कहा कि नहीं ये तो है ही मोटा मोटा व्यर्थ। अभी आप बैठे हैं, बैठे यहां योग करने के लिए, संकल्प को घर का आ गया, ये भी व्यर्थ है। दादी ने कहा कि जिस समय जो संकल्प चाहिए वो आना, वो ठीक है, बाकी व्यर्थ। देखो ये महीन पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं व्यर्थ अतीत बनना है, कोई लक्ष्मी नारायण बनना, बाप समान बनना, कोई मासी का घर थोड़ा है, मेहनत है इसके अंदर। नो व्यर्थ, व्यर्थ नहीं चाहिए। और ये व्यर्थ के बाद फिर और आया चीज, फिर व्यर्थ के बाद साधारण संकल्प भी ना हो, साधारण अतीत, नो साधारण, सब ऐसे खाम का के संकल्प, साधारण, भले उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, टाइम वेस्ट जा रहा है। जैसे बाप समान बनना है, बाप का, बाबा का हर संकल्प विशेष था, लोगों के कल्याण के लिए था, किसी अर्थ सहित था, व्यर्थ नहीं था। तो हम बच्चों को बाप समान बनने के लिए हमारा हर संकल्प, हमारा हर बोल, हमारा हर कर्म विशेष होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए कोई डंडे से थोड़ा जाएगा। अगर हम समर्थ को लाते हैं तो व्यर्थ आएगा नहीं। तो ये कर्मातीत बनना चाहते हैं, बाप समान बनना चाहते हैं, तो हम इन तीन चार चीजों को पार करके हमारा हर संकल्प क्या हो, समर्थ हो, विशेष हो, शुद्ध हो। योग किसे कहते हैं? योग क्या है? मैं तो जो योग करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते रहना भी तो योग है। भले दादियां कहती है कि बाबा भी कहते हैं ज्वाला रूप बनो, ज्वाला रूप बनो, वो ठीक है, बनो, अच्छा है, बनना चाहिए, लेकिन ज्वाला रूप भी तब बनेंगे जब बैटरी हमारी चार्ज होगी, पॉजिटिव संकल्प होंगे। आपने सुना हुआ चार प्रकार संकल्प, चार प्रकार के संकल्प हैं, विकल्प तो खत्म, उधर नेगेटिव है, एक है क्या नाम वेस्ट है, व्यर्थ भी आप खत्म करना है, एक है पॉजिटिव, जो समर्थ संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प है, उससे पावर आती है, उससे प्योरिटी आती है। हम बताएं आप, अगर हम बार 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 पॉजिटिव संकल्प लाते हैं, शुद्ध संकल्पों को लाते हैं, लाते हैं, लाते हैं, हमारी बैटरी चार्ज पावर हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, और प्योरिटी भी आती है। सत्युग में क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक क्राउन ऑफ लाइट और दूसरा क्राउन ऑफ माइट, एक प्योरिटी का क्राउन, एक वो राजाई का क्राउन। तो दोनों पॉजिटिव संकल्पों से आती है। हम बता दें, अगर आप और कुछ भी नहीं करते, करते तो है सब कुछ करते हैं, अगर आप ये पॉजिटिव शुद्ध संकल्पों को बार बार लाते रहो, लाते रहो, व्यर्थ को भगाते रहो, व्यर्थ आएगा ही नहीं जब पहले समर्थ संकल्प है। वो अगर मैं हर वक्त सोच रहा हूं बाबा और कुछ ज्यादा, मैं तो सोचता नहीं भाई, बहुत सिंपल जो बाबा ने गोल्डन संकल्प दिया, मैं तो उसको बार बार रिवाइज करता हूं। कौन सा रिवाइज? मैं कहूं मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, आई एम दी मास्टर ऑफ दिस बॉडी, अकाल तख्त नशीन हूं, वो मस्तक मणि हूं, सारे शरीर को प्रकाशित करो। यानी ये शुद्ध संकल्प, इसकी धारा भाव। व्हाट इज योगा? योगा मीन स्मृति। स्मृति एक क्या है? लकीर है, प्रवाह है, और जो संकल्प बिंदु है, आपने एक बिंदु लगाया, फिर बिंदु लगाया, फिर बिंदु लगाया। साइंस में कहते हैं व्हाट इज लाइन? लाइन इज दी कनेक्शन ऑफ दिस पॉइंट्स, यानी बिंदु बिंदु का एक कनेक्शन है, लकीर है, उनको सब बिंदुओं को मिलाओगे तो लकीर बन जाएगी। और बिंदु क्या है? संकल्प ले, जो स्मॉलेस्ट माइन्यूटेस्ट जो चीज है वो संकल्प है। हम बताएं आप, बाबा ने एक दफा कहा था बच्चे आत्मा क्या है? क्विकेस्ट है और स्मॉलेस्ट है। आत्मा क्विकेस्ट है, बड़ी फास्टेस्ट है, बहुत फास्ट चलती है, अभी आप अमेरिका पहुंच जाएगी, एक सेकंड में शरीर धारण कर लेगी, क्विकेस्ट और स्मॉलेस्ट, अति सूक्ष्म, और संकल्प उसका हिस्सा है, अति सूक्ष्म है, एक बिंदु है। आपने एक संकल्प किया, बिंदु लग गया, और बिंदु लग गया, और बिंदु लग गया, और बिंदु लग गया, तो अगर उसको करेंगे वो स्मृति का रूप धारण कर लेगा, इट विल बिकम स्मृति, फ्लो हो गया, इस प्रकार से संकल्पों का फ्लो हो गया। तो क्या इस और संकल्प ज्यादा सोचने की दरकार नहीं, जो बाबा ने बताया गोल्डन संकल्प, उसको बार बार रिवाइज करो। बाबा ने एक दफा कहा था बच्चे रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, हैं? रिलाइज होगा, रिलाइज। अगर रिलाइज करना है तो बस एक दफा मैं कह दू आत्माओं कह के बैठ गए, कुछ नहीं। हमारे यहां कई आते हैं नीचे, वो आए हुए हैं उसमें बैठे हुए, हमारे तलैटी में बहुत लोग बुजुर्ग आए हैं, घर बार छोड़ के बेच बाज के अपना वो बैंक में जमा कर दिया है पैसा, कहता अब हमें काम ही क्या है, सारा दिन याद ही याद है, याद ही याद। बाबा कहता है बच्चे हर एक मुरली में कहेगा, ऊपर कहेगा बच्चे याद क्या, अपने को आत्मा से बाप को याद करो, बड़ा सिंपल सहज कह देगा, और दूसरे पैर में कहेगा बच्चे यथार्थ याद में रहना कोई मासी का घर नहीं, ये भी हाथ करते कहता नहीं कहता मुरली, मैं खुद पढ़ी, एक पैर में ये, दूसरे पैर में ये। अब बताइए क्या रहस्य क्या है इसका? हम पूछते हैं याद है और क्या है, तो याद ही याद है, याद ही याद है। भाई याद क्या कहते हैं आप, और क्या था याद का मतलब? ये है मैं जो करता हूं भाई, या एक मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, दो इकट्ठे कभी नहीं रह सकते, और सब शुद्ध और सब संकल्पों को हटाओ, ये बाबा के संकल्पों को लाओ, ये मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, अपने को याद करो, अपने गुणों को याद करो, अपनी अपने वो क्या कहते हैं स्वमान को याद करो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं देवता हूं, पूज्य हूं, ये कम बात है, फरिश्ता हूं। अगेन एंड अगेन यू आर रिवाइजिंग इट, और संकल्प मत आने दो। हम कहते हैं लौकिक संकल्प भी खत्म करो, मैं तो कहता हूं बाबा लौकिक कार्य भी आपका सफल कर देगा अगर आप इन संकल्पों में रहेंगे तो। मैंने खुद देखा, हम कहते हैं मैं तो ये सोचता हूं कि मन में बाबा की याद, ये बाबा की शुद्ध संकल्प, वाचा में बाबा का ज्ञान, जो मिले यही ज्ञान दो, कुछ मत दो, डोंट गिव एनीथिंग एल्स, ज्ञान देते जाओ देते जाओ देते जाओ। हम तो कोशिश करते हैं, और सुनने के लायक होना चाहिए, ये बात नहीं कि झगड़ा करे, वो भी बात नहीं है। और कर्म करामनहार, वो कराने वाला है, मैं नहीं करा वो करा रहा है, ऐसा सोचो। तो मन में भी बाबा की याद, कर्म में वाचा में बाबा का ज्ञान, और कर्म बाबा करा रहा है, तो और क्या होगा, यही याद रहेगा। तो क्या करो, चलते फिरते उठते बैठते ये शुद्ध संकल्प रखो, पहले तो अपना आत्मा का प्रवाह लाओ, अगेन एंड अगेन, फिर अपने को पहले आत्म स्वरूप में टिको, भ्रकुटि में। मैं जो करता हूं, जब शुरू करता हूं, जब अमृत पहले उठते हैं ना, हम जाते हैं, हम अबाव कई कहते हैं 8 घंटे योग कैसे लगाए, तो मैंने एक तरीका निकाला 8 घंटे का, बताता हूं कैसे। उठते ही पहला संकल्प कोशिश करते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, रहमदिल बाबा, ये हम मुख से निकलता है धीरे धीरे, मुख माने संकल्प में आता है, और कुछ आता नहीं। तो पहले क्या है, बाबा गुड मॉर्निंग हो गया ना बाबा से, पहला संकल्प ये हो गया। फिर फ्रेश होके जाते हैं, वो हाल में जाके बैठते हैं, तो क्योंकि क्या मैं देखता हूँ कि जब हमें कहते हैं दादी कहते योग आप कराओ, ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, बुरा मत मानिए, यहां पता नहीं, नींद बहुत करते हैं, उनको आलस्य आ जाता है, थोड़ा सा हम ठीक बटेंगे फिर वो आलस्य आ जाएगा, नींद करेंगे, झुटके खाएंगे, यहां तो नहीं आता होगा लेकिन हमारे कहीं कहीं ऐसा आता है। तो क्या आलस्य क्या है, 5 विकारों में छठा विकार आलस्य है ना, इसे क्या कहेंगे, चोर कहेंगे नहीं कहेंगे, 5 चोर है, छठा चोर तो आलस्य है। अब इसको कैसे भगाएंगे आप बताओ, मैं कैसे भगाता हूं बताता हूं आपको, कोशिश, कभी ऐसा अमृत वाले नींद नहीं आएगी, ऐसा कभी देखा नहीं। तो मैं देखो, जैसे अभी घर में बैठे हो, एक घर में पति पत्नी लेटे बैठे हो, आप चार पे पर सो रहे हो, अगर बातें कर रहे होंगे तो चोर अंदर आएगा, वो कहेंगे तो बात हो रही है, जाग रहे हैं। तो अगर दो मित्र हो आपस में कोई रूढ़िहान कर रहे हो, वो भी नहीं आएगा। अगर पिता पुत्र हो वो भी नहीं आएगा, चोर भी, तो बात हो रही है तो मैं अंदर कैसे जाऊं। अगर हम अमृत वेले बाबा से बातें करें, रूढ़िहान करें, तो कभी आलस्य हमारे जो चोर है हमारा टाइम वो वेस्ट नहीं करेगा। आई टेल यू क्लियरली, अगर हम ऐसे बैठ कर बिंदु रूप को देखते हैं, शिव बाबा वो किरणों वाला देखते रहते हैं और झुटके खाते रहते हैं, मैं बिंदु बाबा बिंदु, आगे तो कोई बढ़ते नहीं है। रियली मैं कह रहा हूं, बाबा कहते हैं बिंदु में क्या है, जब तक हम उसे ज्योति बिंदु नहीं कहेंगे, उसको उसके गुणों का गायन नहीं करेंगे, तो मिलेगा कैसे। मैं आत्मा हूं कह रहा हूं, मैं शुद्ध आत्मा, बाबा कहता है आप बाबा मत कहो, मेरा बाबा कहो, मीठा बाबा कहो, प्यारा बाबा, तभी तो कुछ मिलेगा। अगर हम बाबा कहे वो देखते रहे, वो झुटके खाते रहे, वो बहुत गलत है। मैं तो कहता हूं ये हमारे ब्राह्मणों में, बाबा ने एक दफा कहा था, अगर मेरे ब्राह्मणों में सभी का अमृत वेला शुद्ध ठीक हो जाए, सफल हो जाए, तो सत्युग आने में देरी नहीं है। ये बाबा के महावाक्य, ये देख लीजिए, इट मीन्स हमारा अमृत वेला पावरफुल नहीं होता, वंडरफुल नहीं होता, अतीन्द्र सुख वाला नहीं होता, होना चाहिए। अगर हम बाबा से बातें, एक बहुत पुरानी मुरली में आया था, बच्चे जब चोर आए तो क्या करो, बोलो क्या करेंगे आप, आंख बंद कर लेंगे, दुकान लूट के ले जाएगा आप, क्या करेंगे, शोर करो, ओहो चोर आ गया, एक मुरली में था, चोर आया तो शोर करो, शोर मन यही अंदर संकल्पों का, मैं आत्मा हूं, शोर दू, अंदर अंदर बोलना नहीं, अंदर अंदर ही करना, बताओ मुझे। तो हम तो जब अमृत वेले उठते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, पहले तो जो आत्मा के बारे में बाबा जो भी ज्ञान दिया उसको रिवाइज करते हैं, ये वो मस्तक मणि हूँ, वो स्टार हूँ, फिर ऊपर जाते हैं परम धाम में यात्रा करते हैं, फिर बाबा को अपने स्वमान को याद करते हैं, मैं क्या हूँ, अपने आत्मा के सात गुण को रिवाइज करो और उनको रियलाइज भी साथ होगा, ऐसे नहीं कि रिवाइज करते जाएंगे तोते माफर की, वो रियलाइज हो धीरे धीरे संकल्पों में रिवाइज करो और बाप परम धाम में बैठो। नीचे परम धाम ने कहा यहां बैठेंगे, बाबा को परम धाम में जो भी बिंदु चारों तरफ लाइट में, और उसका बैकग्राउंड कौन सा वो है, कोई भी पिक्चर विदाउट बैकग्राउंड नहीं होती है, शिव बाबा जो है वो परम धाम में गोल्डन रेड लाइट उसके पीछे है, ऊपर बिंदु है, चारों तरफ लाइट है, उसको थर्ड आई से देखो, मैं तो देखता हूं दूरबीन से, बाबा है मैं देख रहा हूं, उससे लाइट आ रही है मुझे आत्मा में वृत्ति, उसके गुणों को याद करता हूं बाबा, है जी, बैकग्राउंड गोल्डन रेड परम धाम का क्या है ब्रह्मांड, उसमें बिंदु चारों तरफ उसकी लाइट हो रहा है, वो उसको देखना कैसे है, यहां बैठे हुए जैसे दूर भी नहीं होती, यहां बैठ के वहां जाके बड़ी दूर की चीज देखते, मैं देख रहा हूं उससे लाइट माइट आ रही है, वो मैं उसको पिक्चर बना रहा हूं, साथ मन में संकल्प भी कर रहा हूं, संकल्प करो उसके गुणों का, बाबा दादी ने एक दफा कहा था बच्चे योग क्या है, नाचना गाना और खुशी मनाना, नाचना माने एक पांव यहां एक पांव परम धाम में, दूसरा पांव सत्योग में चला गया बुद्धि रूपी पांव, और गाना माने बाबा के गीत गाओ, गीत माने उसकी महिमा करो, अपनी भी महिमा करो, वो गीत गाओ रियली, तब मजा आएगा, ऐसे हम सूखे सूखे बैठ करके कुछ मजा नहीं आता, मुझे तो मजा नहीं आता भाई, मैं तो बाबा की महिमा करता हूं, अपने स्वमान को रिवाइज करता हूं, और अतीन्द्र सुख की प्राप्ति होती है, तब मजा आता है, आनंद आता है, कोई हमारा जो योग है सूखा सूखा सन्यासियों वाले नहीं है, नो थॉटलेसनेस, थॉट्स को क्रिएट करो, जब तक थॉट्स नहीं होंगे तो प्राप्ति कैसे होगी, हमारा जो बाबा से मिलना है, वी आर मीटिंग गॉड थ्रू थॉट्स, थॉट एनर्जी से मिलन होता है, इफ यू आर थॉटलेस आई एम बिंदु बाबा बिंदु बस खत्म, देख रहे हैं तो क्या मिलेगा, उस विचार भी कुछ करो ना साथ साथ, मतलब एक ही विचार हो, एक ही विचार में बैठे हुए आप, मैं शुद्ध आत्मा हूं बस, उस विचार को इंटरप्शन मत होने दो, फ्लो लगाओ उसको, इस प्रकार से जो है अगर हम करेंगे अमृत वेले करेंगे तो खुशी होगी, शांति होगी, आनंद आएगा, और फिर हम ये उसको रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज होगा, तो भक्ति मार्ग में हमारी यादगार है, हमारे यहाँ गुरुद्वारा एक है सरदार जी, सुबह उठते हैं 4 बजे, वो एक ही बोलते हैं सतनाम वह गुरु, सतनाम वह गुरु, कुछ नहीं बोलते, और तो हमने भी यही किया, मैं आत्मा हूँ शुद्ध हूँ शांत हूँ शीतल, बार बार हम रिवाइज करते हैं, बाबा का हूँ मेरा बाबा मीठा बाबा, और क्या करते हैं, नई बात थोड़ा करते हैं कोई, और होता ना ये इसमें जो करते हैं ये लोग जागरण करते हैं, इसी एक बात को रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते नहीं है, हम भी नहीं बढ़ते, इसी को रिवाइज करते रहेंगे तो अब एक्चुअली रिवाइज होगा। बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने एक ऐसी बात सुनाई, बहुत मुझे उससे मेरा तो बहुत चेंज हुआ, हमेशा बाबा साकार बाबा कहते थे कि ये यात्रा है, अपने को आत्म स्वयं बाप को याद करो, मेरे से बातें करो, या बाप और वर्षे को याद करो, बाबा कहते थे ना, अगर बाप दादा ने एक बताया कि 5 स्टेजेस इसमें सब आ जाता है, इस 5 स्टेजेस में सभी चीजें आती हैं, यात्रा भी आ जाती है, बाप और वर्षा भी आ जाता है, चक्कर भी आ जाता है, बाबा के चक्कर को याद करो, चक्रवर्ती राजा बनेंगे, कमाल है बताओ, वंडर भगवानो वाच, क्या चक्कर को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, कौन बोल रहा है ये, हु गॉड हिमसेल्फ बंदर है, केवल चक्कर, बाबा ने कहा चक्कर को जान भी जाओगे तो बहुत प्राप्ति है, भगवान उवाच, तो चक्कर ये फिर चक्कर भी आ जाता है इस 5 स्टेजेस में, हम तो उसको खूब करते हैं, सुबह से उठते हैं ना वो अमृत वेला भी उसी में करते हैं हम उसको, ताकि हम यात्रा भी जा रहे हैं, यात्रा 2 प्रकार की है, ट्रेवलिंग इन स्पेस बड़े डिस्टेंस तय करते हैं, परम धाम पहुंचे कितना डिस्टेंस हो गया, अव्यक्त वतन फ्रिश्ता बने तो कितना डिस्टेंस कर लिया, और ट्रेवलिंग इन टाइम भी हो गया, सतयुग में पहुंच गया है तो इस धरती पर, लेकिन टाइम का 5000 वर्ष का फर्क है, टाइम भी हो गया, ये ट्रेवलिंग है, ये जो हमारा 5 स्टेजेस है ये ट्रेवलिंग है, इसमें ट्रैवलिंग भी आ गया, चक्कर की याद भी आएगी, बाप और वर्षा भी आ गया, परमधाम भी आ गया, सब बातें इस 5 पेजेस में आ जाती हैं। तो बाबा ने क्या कहा था, बच्चे हम कहते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, बाबा कहते जो मैंने कहा वो आपने माना है, बोलो माना आपने। बाबा ने कहा था बच्चे रोज 8 दफा इसको घुमाओ फिराओ, ये जो 5 स्टेजेस है ना उसको 8 बार इसको सारा दिन में याद करो। आप सब करते हैं, कौन करता है हाथ खड़ा करे, 8 बार करते हैं, बहुत अच्छा है। तो 8 बार नहीं, अब तो कहते हर बार सारा बार करते रहो इसको। तो जिससे क्या होगा, हम ये बहुत बड़ा मेरे से तो बहुत अच्छा, और बिंदु रूप में इसी को करते रहो करते रहो करते रहो, उसमें कितना मर्जी टाइम लगा, तो हम तो करते हैं और उससे बहुत ऐसा लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बाबा के नजदीक पहुंच रहे हैं। बाप समान तो बनेंगे नहीं बात की बात है, परंतु उसके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। और जो बाबा जैसे कहता है बच्चे अपने चेहरे और चलन से सेवा करो, वो भी हम देख रहे हैं हो रही है। चेहरा कैसे बनता है, चेहरा ठीक कैसे होगा, कहता है फेस दिस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, जैसा मन होगा वैसा चेहरा होगा। अगर हम मन में सदा शुद्ध संकल्प कर रहे हैं, कोई हमारा विकल्प नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, तो आपका चेहरा बदल ही जाएगा। रूहानियत ये नहीं कि गोरे से काले से गोरे बन जाएंगे, वो तो नहीं होगा, रूहानियत आ जाएगी। अब मानो कि बुजुर्ग है, उसके दांत भी नहीं है, मैं सोचता हूँ वो कैसे सेवा करेगा, ऐसे कोई चेहरे है, लेकिन वो रूहानियत में रहेगा, अगर इसी रहेगा रूहानियत आ जाएगी, उसकी बात का असर पड़ेगा। तो चेहरा भी बनता कैसे है, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करने से। और चलन एज यू कहते ना, थिंक बिफोर यू एक्ट, जैसा पहले करने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, वो भी संकल्प पर डिपेंड करता है। अगर आपका संकल्प ठीक है, शुद्ध संकल्प है, तो क्या होगा, हमारा चेहरा भी ठीक हो जाएगा, ठीक ही होगा, ठीक हो इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा, लोगों को देख के आकर्षण होगी, हमारे चलन और बोल भी ठीक होंगे। तो मेन चीज है हम शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते चले करते चले करते चले। हम तो जब शांति वन में चलते हैं, सुबह सैर करते हैं, बातचीत नहीं करते, क्या करते हैं हर कदम पर क्या बोलते हैं, अंदर संकल्प बोलना नहीं, अंदर बाबा बस, वो कहते हैं लेफ्ट राइट, हम कहते हैं बाबा, जब स्टेप चलेंगे ना बाबा 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 और कुछ नहीं। बाबा बाबा भी होगा चलो आत्मा याद नहीं, कोई विक्रम तो नहीं होगा, उल्टा ख्याल तो नहीं आएगा, बाबा बाबा के अंदर चलने से भी कुछ शुद्धता शुद्धि है ना, और मैं आत्मा हूं। इस प्रकार से करते करते चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हमको इन शुद्ध संकल्पों में रहना है, आत्मस्वरूप में टिकना है, बार बार याद करना है मैं आत्मा हूं, यानी कि एक बार कह दिया तो काम पूरा हो गया। आप मैं पूछूं आप क्या कर रहे हैं, यही कि मैं आत्मा हूं, ये संकल्प आ रहा हूं। आप पैदल चल रहे हैं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा, और संबंधों से याद करें। अगर हम चाहते हैं बाबा को अमृत वेले खुशी प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, हम तो संबंधों से याद करने की कोशिश करते हैं। हमारे 9 संबंध हैं, मैं 9 संबंधों से ज्यादा याद करता हूं। फास्टेस्ट है ही इज अवर डियरेस्ट मदर, क्या देती है, ज्ञान दूध पिलाता है हमें, पिलाती है मम्मा, माँ हमारी ब्रह्मा माँ ज्ञान दूध पिलाती है, और क्या बनाती है, हृष्ट आत्मा को हृष्ट पुष्ट बना देती है। और ही इज अवर स्वीटेस्ट फादर, स्वीटेस्ट, वो जैसा मीठा कोई नहीं, स्वीटेस्ट है वो, फादर है, क्या करता है, दाता है, दाता बनके हमको स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा देता है, ये उसका कार्य है। थर्ड है ही इज अवर हाईएस्ट टीचर, हाईएस्ट, ऐसा कोई टीचर नहीं, सिंपल पढ़ाई और ऊंचे से ऊंचा पद, और क्या चाहिए, वो आईएएस पढ़ते हैं, हम पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री अल्जेब्रा, क्या क्या पढ़ा हमने, बेकार गया, किसी काम नहीं आया। यहाँ सिंपल माता भी जानते हैं, चक्कर 5000 वर्ष का है, उसके 4 हिस्से कर दो, कितना सिंपल सहज है, आत्मा परमधाम के वासी हैं, कितना सिंपल है, हाईएस्ट टीचर है वो, सिंपलेस्ट पढ़ाई पढ़ाता है, क्या करता है 21 जन्मों के लिए हमारी भाग्य ऊंच पद दे देता है। टीचर कहता है मेरे बच्चों का स्टूडेंट का ऊंचा पद दो, तो ऊंचा पद देता है। देन होलियस्ट सतगुरु, होलियस्ट, इससे परम पवित्र कोई नहीं है, क्या करता है हम होली सदगुरु, वरदान देता है, आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है हमें। और अनफेलिंग फ्रेंड क्या है, अनफेलिंग, और सब दोस्त खत्म हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे, वो हमारा हाथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। हम बता दें, अपना हाथ उसको पकड़ा देना चाहिए। हम कहते हैं बाबा हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, योग में भी वो अंदर संकल्प आता है। देन ही इज अवर सलोना साजन, साजन है हम सजनिया सब, वी आर ब्राइड, ही इज अवर ब्राइड ग्रूम। क्या करता है, हमको सजाता है, ज्ञान गुण शक्तियों से सजा करके आर्नामेंट्स बनाता है। कहां ले जाता है फिर? पियर घर। पियर घर कहां है बोलो? परम धाम। फिर कहां भेजता है? ससुर घर भेज देता है और खुद बैठ जाता है। देखो कितना सुलोना साजुन है। ये याद करो अंदर उसमें संबंधों से और उसका अनुभूति करो। देन ही इज अवर क्या नाम, सुप्रीम सर्जन। साजन और सर्जन भी है, सब बीमारियां दूर कर देगा याद करेंगे तो। ज्ञान इंजेक्शन लगा के सब हमारी बीमारियां दूर कर देता है, सुप्रीम सर्जन है। फेथफुल चाइल्ड, आई टेल यू कोई बच्चा काम आने वाला नहीं है, सब छोड़ जाएंगे। अंत में डॉक्टर भी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कौन वो बाबा बच्चा बन को उंगली पकड़ के हमको ले जाएगा, भवसागर पार कराएगा, और नोबडी विल बी देयर। ही इज अवर फेथफुल चाइल्ड, उसको वर्षा देना है, समझे? कई हमने देखे हैं अपने बच्चों को वर्षा देते थे, वो बच्चे छोड़ गए और बाबा ने उनको संभाला, फिर ऐसे भी है, फेथफुल चाइल्ड। देन ही इज अवर मोस्ट बिलवड, क्या है, महबूबा। क्षमा है, हम परवाने हैं। मैं तो ये ऐसे याद करता हूं, उसे बड़ा आनंद आता है, और 45 मिनट ऐसे करते करते बीत जाते हैं, और खुशी मौज और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अमृत वेला करना, चलते फिरते भी करना चाहिए, मैं आत्मा हूं शुद्ध हूं, भोजन करते समय भी करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि और संकल्प ना आए, यही शुद्ध संकल्प मेरे में आते रहे। आप यहां पर आए, यहां तो कोई काम धाम नहीं है आपको, तो आप चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मैं आत्मा हूं शुद्ध हूं शांत हूं, इन शुद्ध संकल्पों को बार बार रिवाइज करो और संकल्प मत आने दो बस। और कभी कभी चाहो तो मैं आत्मा सर्वशक्तिमान, मेरा बाबा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इसी एक संकल्प में बैठ सकते हैं। गीता में हर प्रकार का योग है, कोई भक्ति योग है कुछ है, जिस भी आपको सहूलियत हो वो करो और अपने को रमणीक बनाओ, खुशी में नाचो। आजादी कहती ना नाचो गाओ और खुशी मनाओ, ऐसे नाचो बस। हम तो ऐसे करते हैं, इसलिए आनंद है, मौज में है, खुशी में है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग गोइंग ऑन वेल, और बाबा के साथ जल्दी जल्दी पहुंचेंगे और बाबा की सेवा में लगे हुए। हाँ, और हम चाहते हैं अगर हम अपने वो सफल करना है, अंत हमारा ठीक हो, किसी को दुख मत देना, सबको सुख दो। शल किसी से बद दुआएं नहीं लो, नेवर नेवर, सबसे दुआएं लो, बहुत बुरी बात, किसी को दुख मत दो, सबको सुख दो, सबकी मदद करो, सबको कोऑपरेशन दो, क्या जाएगा साथ, सब कुछ यहीं रह जाएगा, चाहे अपना छोटा है बड़ा है, नौकर है कोई है बड़ा है छोटा है, कोई भी है, पड़ोसी है अड़ोसी है, डोंट टेक बद दुआ, उसको भी खुश रखो अपने नियम पालन करते हुए, इससे किसी लड़ाई झगड़ा मत करो, सब कहें हाँ ये ब्रह्मा कुमार था तो ये था, देखो ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू आतम भाई जी, आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत सहज रीति ज्ञान का एप्लीकेशन सिखा दिया है। जो बातें कहीं मुश्किल भी लग रही थी, वो मुश्किल कहते कहते ही वो बात को आपने बड़ा सरल कर दिया है, तो सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्पेशल शांतिवन से आज हम लोगों का क्लास कराने के लिए, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए आप यहाँ आए हैं, एक बार पुनः धन्यवाद। आज थोड़ी देर में हम सब जिसका इंतजार कर रहे हैं, हमारी प्यारी परम आदरणीय दादी जी भी पहुंच रही है। थक तो नहीं गए ना, थके नहीं है ना, तो हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। उठना है क्या? तो उठ के बैठ जाइए, ये एक्सरसाइज हम बैठ के करेंगे। एक बार उठ के ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने पांव पर खड़े हो जाइए, नहीं हाथ लंबा नहीं, पांव पर खड़े हो जाइए, तीन बार पांव पर खड़े होकर फिर बैठ जाइए। थैंक यू, बैठ जाइए। अभी हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं आपको जो भी सूचना देती जाऊं। मेरे हाथ में एक सुंदर सी डिब्बी है, कुछ क्षण बहुत ध्यान से इस डिब्बी को देखें। एकाग्रता से अच्छी तरह इस डिब्बी को देख लीजिए। दिखाई दे रही है पीछे तक? ये डिब्बी कैसे लग रही है आपको? सुंदर है और अच्छी लग रही है जी। बीच में सुंदर सा बड़ा गोल्डन मोती लगा हुआ है, कांच की डिब्बी है। अच्छा, दूर से बड़ा अच्छा शार्प समझ लिया, कांच की डिब्बी है, हार्ट शेप है, माला पूरी सजी सजाई सुंदर सी डिब्बी है। अच्छा, इस डिब्बी के अंदर कुछ है या नहीं, क्या ये डिब्बी को देखकर के आपको मालूम पड़ सकता है? इन स्थूल आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है डिब्बी के अंदर? नहीं है ना, दिखाई क्या दे रहा है? सिर्फ डिब्बी, और डिब्बी बड़ी सुंदर और आकर्षक है। अब मैं धीरे से ये डिब्बी को खोल रही हूं। हमारे पास समय कम है, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड अप करके अनुभव करेंगे। ये डिब्बी के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? शायद दूर वालों को नहीं दिखाई देगा, नजदीक वालों को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? मोती दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये डिब्बी के अंदर दिखाई दे रहा है मोती? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है भाइयों को कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? ओके। अब मैं ये डिब्बी फिर से बंद करती हूं। क्या अब मन की आंखों से फिर से आप वो मोती देख सकते हैं? देख सकते हैं? स्थूल में क्या दिखाई दे रहा है? डिब्बी। लेकिन डिब्बी सामने होते हुए भी अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि बुद्धि रूपी नेत्र से डिब्बी के अंदर लगे हुए मोती को देखिए, तो क्या ये संभव है? जब तक नहीं पता था तब तक इन स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देता था। अभी जब समझ आ गई कि ये डिब्बी खाली नहीं है, ये डिब्बी के अंदर मोती है, तो ये डिब्बी बंद करने के बाद भी अगर मैं आपको डिब्बी को याद न करके मोती को देखने के लिए कहती हूँ तो दिखाई दे सकती है ना? यहीं से हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास शुरू होता है। स्थूल आंखों से क्या दिखाई दे रहा है? शरीर दिखाई दे रहा है, और शरीर सजी सजाई आकर्षक डिब्बी है ये कह सकते हैं। शरीर के ऊपर अच्छे वस्त्र पड़े हैं, जरा आवश्यक और चीज वस्तुओं का भी हम उपयोग किए हुए हैं, तो ये शरीर एक सुंदर आकर्षक डिब्बी है। कोई डिब्बी काली है, कोई गोरी है, कोई श्याम है, कोई डिब्बी सुंदर है, कोई डिब्बी थोड़ी ब्राउन है। शरीर अलग अलग कलर्स में है ना, एक ना मिले स्किन का टोन, एक ना मिले तो ये शरीर एक बहुत सुंदर दिखाई देने वाली डिब्बी है। जब तक मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं था तो मुझे डिब्बी ही दिखाई देती थी, डिब्बी के ही आकर्षण में हम फंसे रहते थे, डिब्बी ही हमें खींचती थी और आकर्षित करती थी। अब ज्ञान मिलने के बाद अंतर किस बात का हुआ है? लोगों को सिर्फ डिब्बी दिखाई दे रही है, लेकिन तीसरे नेत्र के द्वारा, समझ के नेत्र के द्वारा, ज्ञान के नेत्र के द्वारा अब हमें मालूम है कि ये डिब्बी की वैल्यू तभी है जब अंदर में मोती है। तो वैल्यू किसकी है? डिब्बी की। कितनी भी सुंदर डिब्बी हो, लेकिन अगर डिब्बी में कोई कीमती मोती, कीमती हीरा है, तो वो डिब्बी को हम लॉकर में रखेंगे। लेकिन अगर वो डिब्बी में इधर उधर का कीचड़ा भर के रखा है तो उसका स्थान अलग होगा ना? ठीक है, तो उसी तरह हमारे इस बॉडी में अगर वैल्यूएबल मोती, डायमंड, आत्मा है तो इस डिब्बी का महत्व है। कितनी भी सुंदर दिखाई देने वाली डिब्बी हो, शरीर हो, लेकिन अगर उसमें से वो डायमंड निकल जाए तो ये डिब्बी की कोई वैल्यू, कितना भी प्यारा संबंधी भी होगा तो भी जैसे ये डायमंड डिब्बी से निकला, उठाओ भाई जल्दी करो, टाइम हो गया है, उठाओ बॉडी को, कहते हैं ना भाई जलाओ, खत्म करो इसको, जरूरत नहीं है अभी इसकी। तो वैल्यू किसकी है? डायमंड की। वैल्यू किसकी है? आत्मा मोती की। अब हम थोड़ी सी देर ये अभ्यास में बैठेंगे कि ये शरीर, मेरा शरीर भी एक डिब्बी है, सामने वाले का शरीर भी डिब्बी है, पेराइटी डिब्बी, लेकिन उसके अंदर ब्रिकुटी के बीच चमकती एक शक्तिशाली आत्मा है। इसमें देखिए मोती चिपका हुआ है, ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर में आत्मा स्टिक होके बैठी है ना, कभी यहाँ कभी वहां तो नहीं हो रही है। अभी डिब्बी के अंदर मोती की फीलिंग क्या होगी? जब डिब्बी के अंदर मोती चिपका हुआ है, ये मोती अगर जीवित होता तो इसकी फीलिंग क्या होती? कैसे भी इस बंधन से मैं छूट जाऊं। ऐसे हम सभी इस डिब्बी के साथ अपने अपने कर्म बंधन और हिसाब किताब से बंधे हुए हैं। मुझ आत्मा की भी अंदर की फीलिंग ये है कि जल्दी जल्दी मेरे हिसाब किताब पूरे कर, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा कर, ये पुरानी डिब्बी से मुक्त होके अपने घर वापिस जाना है। क्यों वापिस जाना है? ये तो देखो टूटी हुई डिब्बी है, सुंदर है लेकिन टूटी हुई डिब्बी है। हमें नई दुनिया में और सजी सजाई कंचन काया सतो प्रधान डिब्बी में जाना है। वहां ये मोती इस तरह फंसे हुए मोती जैसी हालत में नहीं होगा। आप सोचो ये स्मृति ही कितनी सुखदायी स्मृति है। तो अब हम थोड़ी सी देर ये अभ्यास में बैठेंगे कि मैं मोती, मैं डायमंड, ये शरीर रूपी डिब्बी में स्थित हूँ और मेरे सामने जो है वो भी डिब्बी के बीच चमक रही मोती डायमंड है। तो सब आमने सामने बैठ जाए, आप यूं आमने सामने बैठ जाए, आप यूं आमने सामने बैठ जाए, जो जहां है अपना पार्टनर ढूंढ लो, यूं हो जाए। भैया रेड लाइट कर दीजिएगा। नहीं मैं बोल रही हूँ, ढूंढ लो अपना कोई। कोई है जिसके पास पार्टनर नहीं है? आगे आ जाओ, यहाँ ये भाई के पास आ जाओ। एक दूसरे की ब्रिकुटी में देखते हुए महसूस करें मैं आत्मा रूपी मोती, प्रकृति से प्राप्त सुंदर डिब्बे के बीच बैठी हूँ। ठीक उसी तरह मुझ आत्मा के सामने भी एक सुंदर सी डिब्बी और डिब्बी के बीच चमकती हुई सुंदर बहुमूल्य गुणवान मोती है। जैसे मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में दिव्य गुणों से भरपूर हूँ, वैसे ही मेरे सामने चमकती हुई आत्मा भी गुण संपन्न है। गुणों का भंडार है, अपनी मूल स्थिति में वह आत्मा भी सत्प्रधान और शक्तिशाली है। स तत्व प्रधानता की वह चमक उस आत्मा से निकल मुझे भरपूर कर रही है। महसूस कीजिए केवल और केवल चमकती हुई मणि को फील करें। और कुछ भी दिखाई न दे, केवल प्रकृति के बीच चमकते हुए मोती को देखें। और धीरे से उन शक्तिशाली किरणों को फील करते हुए अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाए। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम बुद्धि के विमान में बैठकर इस हॉल से बहुत दूर माउंट आबू के मार्केट में पहुंच जाइए। मार्केट के एक कोने में खड़े रहकर भागते हुए लोगों को देखने का प्रयास करें। अपनी आंखें बंद कर दें और इस हॉल से बुद्धि से बाहर निकलकर मार्केट के बीच पहुंच जाइए। ढेर सारे लोग उतावलाई से भाग दौड़ मचा रहे हैं। कोई घर की ओर भाग रहा है, कोई खरीदारी के लिए भाग रहा है, लेकिन सबके चेहरे पर उतावलाई, अधैर्यता, अशांति है। याद कीजिए ये बहुत सारी डिब्बियां मेरी नजर के सामने दौड़ भाग रही है। अलग अलग रंग और रूप की डिब्बियां चारों तरफ दौड़ भाग रही है। प्रयास कीजिए कि उन डिब्बियों के बीच विभिन्न रंगों की डिब्बियों के बीच केवल चमकती हुई आत्मा को देखने का प्रयास करें। और वाह, चारों तरफ चमकती बिंदियां ही दौड़ रही है और तेज दौड़ती हुई बिंदियां मुझे दिखाई दे रही है। लोहे की चमक बुझी हुई है, कोई की चमक मुरझाई हुई है, कोई की चमक इतनी कम है जो बुझी की बुझी। उन चमकती हुई आत्माओं को कुछ क्षण महसूस कीजिए। और धीरे धीरे आपके दिल में उन्हों के प्रति रहम की भावना उठ रही है। कितनी अशांत, कितना परेशान आत्माएं हैं। और बाबा से बुद्धियों छुटा कर प्यारे बाप दादा का आवाहन कर सागर से शक्तियों को लेकर उन आत्माओं को प्रेम शांति और शक्ति की किरणें प्रवाहित करें। कि ये शक्तिशाली किरणें धीरे 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 उन आत्माओं तक पहुंच रही है आप महसूस कर रहे हैं कि आप से निकली हुई यह शक्तिशाली किरणें जैसे ही उन परेशान आत्माओं तक पहुंचती है, उन आत्माओं की चमक बढ़ जाती है। उन आत्माओं में भी शक्ति और बल का अनुभव हो रहा है। अपनी ये किरणें और भी फैलाते जाएं और आत्मा की बढ़ती हुई चमक को देखकर अपने दिल अंदर एक गहरी तृप्ति का अनुभव हो रहा है। महसूस करें, चारों ओर घूमती हुई मणियां और उसको आप अपनी सकाश दे रहे हैं। शक्ति की किरणें दे रहे हैं। और इस बेहद तृप्ति के साथ इस हॉल में पति से वापिस आ रहे हैं। जब तक हम यहाँ बैठे हैं, इसी स्मृति के साथ आप अपने अपने शहर और स्थान की आत्माओं को अपनी किरणों का विस्तार कर